یہاں مہاجن لوگ اس گفا میں سفر کرتے ہیں, ٹیپ ان سائٹ, اسے نیچے نہیں ملے گا. طے انہد شبد وجے تنبانی سہج سہج سمائی ہے, اس میں آنند کی دھنی ہو رہی ہے, اس کے ملنے سے تم سہج اوستھا کو پا جاؤ گا جہاں سے وہ دنیا آ رہے ہیں. تو اب ہم اس وقت کہاں ہیں؟ ہم اندیوں کے گھاٹ پر جسم کا اور جگت کا روح بنے بیٹھے ہیں. نو دروں میں ہماری روح بات پھیل رہی ہے. جب تک انترمکھ ہو کر بیک بھی آئے, جو روح کا ٹھکانا ہے جہاں پر, جہاں سے پنڈ سے انڈ برہمنڈ کو رستہ جاتا ہے, وہاں نہیں ہم بیٹھتے, تب تک وہ دھنی ہو رہی ہے, ہم اسے خالی رہتی, اس کو نہیں پکڑتے سکے. جب تک وہ نہیں ملے گا ہم آگے نہیں جا سکتے. ایک گھنٹہ کہیں بج رہا ہے, حافظ صاحب یہ مثال دے کر بڑی خوبصورتی سے سمجھانا چاہتے ہیں. کس ندانست کہ منزل گئے معشوق کجاست, امینس کے بانگ جس سے بھی آیا. کوئی نہیں جانتا کہ میرے پیارے کی منزل کہاں ہے, اتنی ہے کہ وہاں سے گھنٹے کی دھنی آ رہی. اگر گھنٹے کی دھنی کو تم پکڑ لو, اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ, کہاں پہنچو گے؟ جہاں گھنٹے کی دھنی ہو رہی ہے, جہاں سے ہو رہی ہے. وہ پرماتما نام ہے, ان ٹو بینگ ہستی میں آیا, نام ہوا, نام کھنڈوں برہمنڈوں کے بنانے والا. اگر نام کی لوئسٹ لنک جوتی جس میں ہے, اس میں جوتی ہے, ادگیت ہے, اگر وہ آپ پکڑ لو اس کو, اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے, کہاں پہنچو گے؟ جہاں سے نام آیا, نام میں پہنچ جاؤ. جب تک یہ نو نے پھر یہ ہے کہا, کہتے آپ کے انتر ہے, نو نے دی امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کا مثام جیتے. پھر یہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہر ایک گھٹ گھٹ میں ہے. جیتے گھٹ امرت سب ہی میں بھاوے تسے پیائی. وہ امرت کہا کہ گھٹ گھٹ میں ہے بھائی, ہر ایک گھٹ میں. کون پیتا ہے جس کو مالک بلانا چاہے؟ ہے گھٹ میں, ہندو کے گھاٹ سے اوپر ہے. واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ یو ہیو ناٹ اے اسپیک آف اٹ. ہر ایک جگہ پانی, مگر ہمیں قطرہ نہیں مل رہا. جل میں مین پیاسی یہ دیکھ مویاوے ہاسی, ہم اس میں تیر رہے ہیں, ہمارے جیون کا وہ آدھار ہے. ہم پوچھتے وہ کہاں, کارن ہم پھیلاؤ میں جا رہے ہیں, اور کچھ نہیں. انترمکھ اگر ہو جائیں تو یہ گٹ گٹ میں ہے, کوئی ہردے سے خالی نہیں. مگر جب تک کوئی ان بھائی پوچھ نہیں ملتا ہے اس کو, اس کا کانٹینیو کے گھاٹ سے اوپر لا کر اس کا کانٹیکٹ نہیں دیتا, وہ اس کی جوتی بھی اس کی شرتی دونوں معلوم رہتی ہے. یہ بھوکے کا بھوکا مر جاتا ہے, اتنی اونچی دولت ہوتے ہوئے جنم مر میں آتا جاتا ہے. پھر اور اس کو واضح کرتے ہیں, انتر کھوٹا امرت بھریا, امرت کا ایک کنواں بھرا پڑا. شبد کاٹ پیے پنہارے, وہ شبد کے ساتھ لگنے سے پنہاری پانی بھرنے والے اس کو پیے گی. الٹا کنواں گگن ہے, یہ الٹا یہ گگن ہے, الٹا کنواں. اس میں پانی کون پیے گا؟ کوئی پنہاری رو جس کو گرو مل گیا, جس کے انورشن پن چھوڑنا آ گیا ہو, انہوں کو انترمکھ کرنا آ گیا ہو, اس سے اوپر آنا آ گیا ہو, کوئی عامل پر اس کو بٹھا کر اس کا تجربہ کرا دے, وہ روز روز اس امرت کو پیتا. پھر کہتے ہیں ہم پی کیوں نہیں سکتے اس کو جب گھٹ گھٹ میں ہے؟ کھاری میں امرت بھرپور ہے, وہ امرت اوور فلو کر رہا ہے ہر ایک جسم کے اندر, ہر ایک انسان کے اندر. منمکھ سادھنا ہے, جو منمکھ لوگ ہیں ان کو اس کا رس نہیں ہے. اب منمکھ کس کو کہتے ہیں؟ گرو امر داس جی صاحب نے منمکھ کی بھی تعریف کی, سے منمکھ جو شبد نہ پہچانا ہے, گر کے بھے کی سار نہ جانا. شبد یا نام کا پتہ نہیں, انبھوی پش اول تو ملا نہیں, اگر ملا تو اس کا بھے دل میں نہیں بتا کہ یہ ہمارا ہے. وہ ہماری طرح چلتا پھرتا لائک اے مین نظر آتا, مگر وہ کچھ بھی یا کچھ اور بھی ہے, اس کے ہما دانی ہونے کا خیال اس کے ہرنے میں نہیں بیٹھا, بہ نہیں بیٹھا. ایسے پوش سارے ہی منمکھ ہیں. گرو ملا ہوا تو بھی منمکھ ہے, نہیں ملا تو بھی منمکھ. اگر اس کا بہ بسے ہم کوئی پاپ کر سکتے ہیں؟ نام جب وہ پاور دیتی ہے, کانٹیکٹ ملتا ہے, وہ ہر وقت ہمارے گھر میں ہے, ہم پاپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پانچ بچہ برس کا بچہ بیٹھا ہو, ہمارے زور فرماتے تھے ہم اس کے سامنے کوئی پاپ نہیں کرتے. ارے بھائی وہ ہر وقت جو گھٹ گھٹ میں بیٹھا ہو وہ کیسے پاپ کر سکتے ہیں؟ تو من مکھا سادھنا آیا سوال سے, جو من مکھ لوگ ہیں, منندوں کے گھاٹ پر بیٹھے ہیں, جن کو کوئی انبھی پوچھ نہیں ملا, نام کو کانٹیکٹ نہیں ملا. اگر ایسا انبھی پوچھ مل بھی گیا ہے اور اس کا بھے دل میں نہیں بسا, سمادان ہونے کا خیال نہیں, وہ سارے من مکھ. ایسے لوگ یہ دولت انتر میں کانٹیکٹ تھوڑا مل بھی جائے پھر بھی وہ خالی رہ جاتے, اسے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے. حضور فرمایا کرتے تھے کہ دوا لے لی, جالے میں رکھ دی, کھائی نہیں, بیماری کیسے جائے گی؟ اور پھر قربانی میں کہا ہے سرب دوخ کو اوقت نام, سار دکھوں کا واحد علاج نام, ہر ایک قسم کے دکھ کا علاج نام. نام بڑی بھاری پاور ہے, یہ عمل کر دینے والی چیز ہے. کیسے کیسے جو کستوری مرگ نہ جانا ہے تو پرمدا پرم بلایا, پھر ہوتا ہے نا ناخو اس کے, کستوری اس کے ناخو میں ہوتی ہے. مگر جب بھاگتا ہوا ادھر چلتی ہو تو خوشبو ہے تو ادھر بھاگ جائے گا, ادھر جاتا ہوا دوسری طرف خوشبو والے ادھر بھاگ جاتا ہے اس کے اندر. ارے بھائی ہم کو رس باہر آ رہا, وہاں جاتے پھر پھیکے پڑ جاتے. کہتے وہ تمہارا ہی اپنے ریفلیکشن ہو رہا ہے, وہ چیز آپ کے اندر میں ہے, آپ انورٹ ہو, وہ ہماری آتما کی آتما ہے, جیون آدھار ہے. نام آدھار کر کے بیان کیا تو جیسے مرغ باہر بہتا پھرتا ہے کستوری کی خوشبو کے لیے, ارے بھائی وہ تو اس کے اندر ہے. ایسے ہی ہم بارندوں کے گھاٹ پر اس ہمیشہ کی خوشی کو پانا چاہتے ہیں, بھٹکتے رہتے, ملتی نہیں ہے, نہ باہری سامانوں میں ملتی ہے, نہ انٹلیکچوئل جھگڑوں میں ملتی ہے, نہ باہری حکومتوں میں ملتی ہے, نہ دولت و جائیدادوں میں ملتی ہے. وہ اصل چیز اپنے آپ میں ہے. جب تک انترمکھ ہو کے اپنے آپ کا انبھو نہ ہو, اس کا کانٹیکٹ نہ ہو, یہ خوشی ہمیشہ کی نہیں مل سکتی. ایک مسلمان فقیر نے فرمایا یار در خانہ وہ من گردے جہاں بھی گرد ہوں, وہ یار جس کو میں تلاش ہوں وہ تو میرے گھر میں بس رہا ہے اور میں جہاں کے گردا گرد اس کو تلاش کر رہا ہوں. سمجھے؟ آپ در کوزا وہ من تشنہ نہ وہ بھی گرد ہوں, کوزے میں پانی بہائیے کوزا الٹا کنواں گگن میں, اور وہ کہتے ہیں میں پیاسا مر رہا ہوں. انترمکھ ہو تو اس کو لے لے, کیونکہ پھیلاؤ میں اسے خالی ہے. تو سارے مہاتما ہی ایک ہی بات کر رہے ہیں. پھر فرمایا سب کچھ کرم ہے باہر نائی, باہر ٹولے سو پر بلائے. جو کچھ بھی ہے ہمارے گھٹ انتر میں ہے, باہر نہیں. ہم باہری ساز و سامانوں میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, بھائی وہ کیسے ملے گی؟ تو باہر کے ڈھونڈنے والے ہمیشہ ہی خالی رہے. نان کے امرت منے مائیں بھائی گر پرساد, بھائی وہ امرت تمہارے من کی انتر ہے, ملتا کہتے ہیں گرو کی کرپا سے ملتا بھائی. ویسے جب تک گرو کرپا نہ ہو وہ چیز ملتی نہیں, نہ ملی نہ مل سکتی. تو جو باہر وہ کی تلاش کر رہے ہیں اس دولت کو, وہ ہمیشہ خالی رہے, خالی ہے اور خالی رہے. بات تو سنی. تو اس امرت کے پانے کے لیے ہمیں انترمکھ ہونا پڑے گا. بات سنی. جب تک انترمکھ نہیں ہوتے, سنا پیتا رنگ سے ہوں جن کو لکھیا آد, جیسے امرت کو کون پی سکتے ہیں جن کو دھر مالک کی دیا ہو, للاٹ میں لکھا ہوں. یہ قربانی اور جگہ بڑا نرنے کیا ہے. تور قلم پایا تد جن کو سے نام ہر کے لاگے, اے مالک جس کو تھر سے تو نے آپ دیا کی, وہی اس نام کے ساتھ لگ سکتے جس کا نام کبھی کرا رہا. મારી એક ચિંતા તો સારી તો નહીં લેવી પડી. કહેતો છે ક્યાં મિલતા કહો નાનક તે સુખ હોવા તીર્થ કારણ આનંદ વાજા. કહેતે ઉસકો સુખ મિલતા ઉસકી નિશાની ક્યાં કે આનંદ કી ધુની જાગૃતિ. વહી ફર આ ગયા ગુરુમતી મન નિર્મલ હોવા અમૃત તત્વ ખંડ. ગુરુ કી મત દ્વારા મત એ ઉસ અમૃત કો પીકર નિર્મલ જલ કો પીકર યે ભી નિર્મલ હો જાતા. અસલ તત્વ કે રાજ કો જાન જાતા તો યે અમૃત કહાં હૈ યે આપકે અંતર મેં બડા મોટા. અમૃત ક્યાં હૈ વો નામ હૈ કહાં સે મિલતા હૈ ગુરુ સે મિલતા હૈ બસ આપકા. યહાં ભી બસ નહીં ક્યાં ફિર કહાં. સુર નાળમુન અમૃત ખોજ દે તો અમૃત ગુરુ તે પાસ. બડા ખોલ ખોલ કર સમજા લે દેવી ઓર દેવ સે અમૃત કો ખોજ રહે. કહેતે વો અમૃત કહાં સે મિલતા કહેતે ગુરુ સે. બાહરમુખી નહીં કિતાબો મેં ઉસકા જિક્ર હૈ વો ચીજ આપકે ઘટ મેં હૈ. પાયા અમૃત ગુર કૃપા કી નહીં સચ્ચા મન વસાય. ગુરુ કૃપા કરે કે તો વો નામ મિલ જાતા અંતર મેં પ્રગટ હોય હૈ અબ ભી જાહેર હો જાતા બાત ઇતની. અબ ક્યો નહીં હવે વો ભાષતા ક્યો નહીં ઇસકા જવાબ દિયા હૈ. જિચરે મન લહેરી વિચ હૈ હૌ મેં બહુત અહંકાર. ટીચર શબ્દે સાધ ના આયો નામ ન લગો પ્યાર. જબ તક મન મેં લહેરે ઉઠ રહી હૈ કામ ક્રોધ લોભ મોહ અહંકાર કે ઉસ વક્ત તક શબ્દ કા સ્વાદ નહીં આતા હૈ રસ નહીં આતા હૈ. જબ રસ ના આયે વો કૈસે મિલ સકે. શબ્દે સાધ ના આયા શબ્દ કા સ્વાદ નહીં આયા. જિચરે મન લહેરી વિચાર હૌ મેં બહુત અહંકાર. ટીચર શબ્દે સાધ ના આયા નામ ન લગો પ્યાર. જબ તક કિસી કા રસ ના મિલે ઉસકે સાથ પ્યાર નહીં હોતા. પ્યાર કા પહેલા કદમ કિસી ચીજ મેં ખુશી યા રસ ગાના. જબ રસ આયા ઉસે પ્યાર હો ના. બાર બાર પિયા ફિર પ્યાર હો. તો ઇસી તરહ આવ ખુદ નામ બાણી ભરી પડી. આવ ખુદ નામ નિર્મલ જલ અમૃત પાઈએ ગુરુદ્વારે. ફિર વહી ચીજ બાર બાર ખોલ હરેક મહાત્મા ખોલ ખોલ દુનિયા અંદર ગુરુદ્વારે મિલતા હૈ. કહો નાનક જિસ મસ્તક લિખ્યા તિન ગુરુ મિલ રોગ બિધારી ઉસકે સારે રોગો કા નાશ હોતા. આપ દેખીએ ઇતની સાફ ગોઈ સાફ વજાહત કે સાથ હોતે હુએ જો સાહેબ યે કહેતે હૈ કે કિસી મહાપુરુષ કી જરૂરત નહીં. વો ભાઈ આપ ફૈસલા કર રહે ગુરબાની કે ઠીક કહેતી યા વો ઠીક કહેતે. અમૃત રસ ગુરુ સે પિયા ફિર કહેતે યા મેં ગુરુ સે પિયા જા સકતા. હર પીતે ઇનકે પીને સે તૃપ્તિ આતી હૈ. જગહ જગહ ઇસી કા બયાન. તો વહી ફરમા રહે હૈ જિસ જલનિદ કારણ તુમ જગ આયે સો અમૃત ગુરુ પાઈ જીઓ. ફેર ગુરુ સે મિલેગા કહાં સે હમ કહાં લગ રહે હૈ. હમ બાહરમુખી ચીજો મેં લગ રહે હૈ. જબ તક જિસ ઠિકાને હૈ તો હમારે અંતર મેં યે ભી હમકો કિસી અનભવી પૂછતે. વો કહેતે ભાઈ ચીજ જિસકો તુમ પાના ચાહતે વો તુમ્હારે અંતર મેં હૈ. તુમ અંતર મેં જાઓ. અગર અંતર મેં જાઓ તો ઉસકો પાલો. જો ચીજ જહાં વહી મિલેગી ના દૂસરી જગહ કહાં મિલ સકતી. મિલેગી વહાં જો ચીજ જહાં વસ્તુ કહીં ઢૂંઢે કહીં કઈ ભી દાવે હાથ. ચીજ તો ઇન્દ્રિયો સે ઉલટ કા ઉપર આને પર હો બાકી. હમ ઇન્દ્રિયો કે ઘાટ પર ઉસકો તલાશ કર રહે તો કૈસે મિલેગી. નહીં મિલ સકતી. વસ્તુ કહીં ઢૂંઢે કહીં કઈ ભી દાવે હાથ. કહે કવિ તબ પાઈએ જો ભેદી લીજે સાથ. કિસી રાજદાર કો લે લો જો ઇસસે વાકિફ કાર હૈ. આપકો ઉસકા કોન્ટેક્ટ દે દેગા. જબ તક વો નહીં મિલેગા કામ નહીં મિલેગા. અબ કૌન પી સકતા ફિર સવાલ આતા હૈ. જો જન મર જીવે સો અમૃત પી. જો જીતે જી મરે ક્યાં પિંડ છે રૂ ઉસકી ઉપર આય વો ઇસકો પી સકતા. બસ આપકા પી. જબ તક વો ઇન્દુ કે ઘાટ પર બેઠા હૈ વો ઇસકો પી નહીં સકતા હૈ. મન ગુરુમત ભાવ સુભાય છે, ગુરુમત દ્વારા એ ચીજ મળશે. હા મારે અંતર જબ તક પિન જીતેજી મરે નહીં ઇસકો નહીં પા સકતા. જીતેજી મરને કા રાજ પિંડ કા રૂહ સે ઉપર આને કા તજુર્બા કબ મિલતા હૈ? ગુરુ અમરદાસ સાહેબ ફરમાતે સદગુરુ મિલીએ ઉલટી વહી ભાઈ, જબ કોઈ સત્સ્વરૂપ હસ્તી મિલતી હૈ હમારે ઇન્દ્રિય ઉલટને લગતે હૈ. ભાઈ સંતો કે મારે કો ઉલટા મારેંગે કહા, ઇસીલિયે અંતર્મુખ જીવત મરે તા બૂજ પાય. જીતે જી મરે પિંડ સે રૂહ ઉપર આય તબ ઉસકો પા સકતા. એ મૌલાના રૂહ સાહેબ ને કહા, ક્યું જહેજ બેરૂ નિયામત આદમી બાદશાહ તસવીર લાભી અજમી. જબ તક ઇન હિસ્સો સે રૂહ ઉપર નહીં આતી તબ તક ઉપર જો કુછ હો રહા હૈ ઉસે લાયન રહેતા. નામે જ્યોતિ ભી બદલાય, નામ જપત કોટ સૂરજ જ્યારા બિનસા ભરમ અનેરા. કરોડો સૂર્યો કા પ્રકાશ હોતા ઇસમેં દુનિયા હૈ જ્યોતિ હૈ. જબ તક ઉપર ના પિંડ સે ઉપર ના આયે તબ તક ઉસે લાયન રહે નહીં. સબ આત્મા એક હી બાત કર રહે. इसलिए क्राइस्ट ने कहा है जगह सेंट मैथ्यूज ने, आईज आर दी विंडोज ऑफ दी सोल, कि आंखें जो हैं रूह की खिड़कियां हैं इस जिस्म में जिसे रूह बाहर देखती है. इफ दाइन आई बी सिंगल दाइन होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट. अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, अब दो है ना एक बन जाए, ये अब प्रैक्टिकल मजबूत है. दो की एक आंख कैसे बनती है ये किसी आमिल को उसके आपको बताना, अंतर की आंख को खोलना जिसको शिव नेत्र कहा. कहते हैं अगर वो आंख बन जाए एक तुम्हारे अंदर नूर भर जाएगा. सब महात्मा की बात कह रहे हैं. तो इसलिए आप देखेंगे कि वो अमृत क्या है जिस जल निर्कारण तुम जगाए सो अमृत गुरु पाई जी. वो गुरु से मिलता रहे बड़ी साफ गोई कर रही. अब कहते दुनिया कहां लगी पड़ी है, सवाल तो ये है. उसके आगे जवाब देते हैं और वो कहां तक कामयाब होते हैं उसका भी जवाब देते हैं. हाँ जी.
छोड़ो वेश भेख चतुराई दुविधाए फल नाही जियो.
कहते हैं भाइयों छोड़ो, बड़ा साफ लफ्ज है, छोड़ दो रेस और भेख को. ये दुविधा का कारण है और चतुराई पैदा करने वाले. ये फल नहीं, अमृत नहीं मिलेगा, ये फल नहीं दियो. रेस भेख चतुराई दुविधा ये फल नहीं दियो. अब देखेंगे यहां पर दो किस्म की विद्या, एक अपरा विद्या. इंसान आत्मदेधारी है, आत्मा के लिहाज से सारी मनुष्य जाति है. परमात्मा ने कुंभोरे लगाकर नहीं भेजी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, उन्हें तो एनसोल्ड बॉडीज पैदा की हैं. आत्मा देहधारी का कॉन्शियस एंटिटीज, जिस जिस समाज में वो जिस्म आया उस समाज के वो तलक रस्म और रवाज में रहनी रहनी बन गई. और इंसान जो कि मिलजुल कर रहने वाला सोशल बीइंग है, इसलिए उसने किसी न किसी समाज में रहना. समाजें हम लोगों ने बनाई है, परमात्मा ने मोरे लगाकर नहीं भेजी. ये इसलिए बनाई गई कि इंसान क्योंकि सोशल बीइंग है मिलजुल कर रहेगा. खास खास कानून बनाए गए कि इंसान नेक पाक और सदाचारी बने और इंसान इंसान के काम आए. इसकी गर्ज यही थी किसी समाज में, मगर उसकी जकड़ों में आप देखिए समाज के एक तो मीन्स टू दी एंड लेना, उससे मदद लेना, एक उसी को गोल समझ लेना. हमारे लोगों का क्या प्रचार, जरा गौर से देखिए. हम कहते हैं जो सिख हैं बस उन्हीं का उदाहर होगा, बाकी सब ऐसे वैसे. मुसलमान भाई कहते हैं भाई नहीं, जो ईसाई कहते हैं भाई, जो क्राइस्ट को नहीं मानेगा वो सब जहन्नम में गए. आप बताओ कौन सच्चा हुआ? ये तंगदिली है और क्या. हर एक समाज के बनाने की गर्ज ये थी कि वो परफेक्ट मैन टर्न आउट करे, मुकम्मल इंसान पूर्ण पुरुष पैदा करे. ये था आदर्श हर एक समाज का. वो मैन मेकिंग की बजाय पूर्ण पुरुषों को टर्न आउट करने की बजाय वो समाज बनाने में लग गया। नतीजा क्या? क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास, समझे? क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास, समाजों में कशमकश। वो कहते हैं हमारी समाज ऊंची है, वो कहते हैं हमारी ऊंची है। अरे भाई ऊंची सभी है, उनसे काम ले लो, ये तो रास्ता है ना। दाया का काम करती है समाजें, बच्चा नहीं जनते। हमने मैटर को सोल पर सवार कर रखा है, अफसोस से कहना पड़ता। ये मतलब समाजें हमारे लिए बनाई गई थी, हम इनके लिए नहीं पैदा किए गए थे। हमने इनसे काम लेना था, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, सबके अंतर परमात्मा। अरे भाई जो दूसरी समाज है वो भी तो आत्मदेदारी है, उनके अंतर भी तो वही परमात्मा बस रहा है, फिर नफरत क्यों है? जब उस रस को पा लेते हैं तो नतीजा क्या होता है? आप देखिए, गुरु अर्जुन साहब थे, छज्जू भक्त थे, हजरत मियां मीर थे, कितना प्यार था। अरे भाई चार शराबियों के दरमियान कितना प्यार होता है, वो चूड़ा हो या चमार हो, गले लग लग कर मिलते हैं। अरे भाई चार उस परमात्मा के भक्त गले लग कर नहीं मिलेंगे, कभी हो सकता? उसका कारण वो अभी वो चीज मिली नहीं। तो गलत प्रचार के नतीजे से, इसका ये मतलब नहीं कि समाजों में न रहो, समाजों में रहो, जो वर्ज है उसको हासिल करो। हमारी रद्द क्या है कि हमारी आत्मा में पूर्णता आ जाए, मन इंदु का घाट छोड़कर पूर्ण से मिलकर पूर्ण हो जाए, यही आदर्श है ना। बी ई परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। तुम भाई मुकम्मल इंसान बनो जैसे तुम्हारा पिता आसमानों में है। कभी साहब से पूछा गया इंसान को कैसा होना चाहिए, उसका जवाब बड़ी मिसालें दे देकर समझाते हैं। पहले कहते हैं रोड़ा होरो बाट का तज मन का अभिमान, क्या दरस्ते का रोड़ा बन जा भाई, अभिमान छोड़ दे। फिर आप ही कहते हैं रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को दुख दे, रोड़े बन गए तो भी तुम्हें उठा उठा कर मारेंगे, दुख का कारण बन जाएगा। फिर कहते अच्छा फिर जो धरनी में खे जैसे मिट्टी बारीक होती है ऐसे बन जाओ, कहते नहीं ये भी ठीक नहीं, ये भी उड़ उड़ लागे इसमें भी दुख है। फिर कहते कैसा हो, कहते जैसे जल होता वैसा हो, कहते जल भी कभी ताता छीता हो, ये कभी गर्म है कभी सर्द, ये भी आदर्श ठीक है। फिर पूछा आखिर कैसा होना चाहिए हरिजन को, फरमाते हैं हरिजन हरि जैसा चाहिए, जो हरि है ना वो आदर्श हमारा, वो पूर्ण उसके, वो सब पैदाइश उसकी है, सब पैदाइश हमारी बने, हम उसमें रंग ले लें, उसमें जाग उठे, अपने आप को भूल जाए, सारी दुनिया हमारी है, सारी समाजें हमारी अपनी। किसी समाज में पैदा हो इतने ऊंचे चढ़ो कि सारी दुनिया तुम्हारी समाज बन जाए, या सारी समाजें तुम्हारी अपनी समाजें बन जाए। जो इन जकड़ों में रह गए उसमें क्या होगा, दुविधा पैदा होगी। गुरु नानक साहब फरमाते हैं छोड़ो वेश भेक, इनकी जकड़ों को छोड़ो भाई। इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल, किसी मंदिर में किसी समाज में पैदा होना बड़ी खुशकिस्मती, बट टू डाई इन इट इज सिन, उसकी जकड़ में दर दीवार की जकड़ में मर जाना ये पाप। जब महात्मा अंतर आत्म अनुभव में जागते तो सारी सृष्टि सभी सांजीवाल सदायन कोई नदी से बाहरा जियो। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। वहां ये सवाल नहीं निकाले समाजों का झगड़ा ही कहां रह जाता, ये दौलत अंतर्मुख है। वो ये नहीं कहते वो किसी समाज को तोड़ते नहीं ना नहीं बनाते, अरे भाई जिसमें हो उसमें रहो, आइडियल आदर्श को पा जाओ, तुम्हारी सारी समाजें मुबारक हैं। आप देखिए गुरु नानक साहब ने, गुरु अर्जुन साहब ने जब वाणी एकत्र की है गुरु ग्रंथ साहब के लिए, आदि ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ के लिए, जिसका हम गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, उसका असल नाम है श्री आदि ग्रंथ। तो उसमें क्या कसौटी रखी, जो पूर्ण पुरुष थे उनकी वाणी एकत्र कर, कहीं कबीर साहब की वाणी कहीं नामदेव जी की मानी है, कहीं रविदास जी की मानी है, जो नाम के पुजारी थे ये कहो, कहीं शायद नाई के भी श्लोक है, त्रिलोचन ब्राह्मण के भी है, खत्री साहबान की मानी है, हर एक महात्मा की मानी, जवान भवी थे उनकी मानी इकट्ठी कर दी, एक ग्रेट बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया। अब हम जब अदब से बैठते हैं, अदब करते हैं, मत्था टेकते हैं, बताओ सबको टेकते हैं कि नहीं, तो भाई दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे हैं, जब भी वो दुनिया में आए पीछे जितनी वाणी उनको मिल सकी उस वक्त तक एकत्र कर ली। अरे भाई उसके बाद जो महात्मा उसी श्रेणी के अंदर आए हैं वही तालीम दें, उनके लिए भी हमारे दिल में जो आगे आए हैं उनके लिए भी, पास्ट के लिए भी है। तो महात्मा जब आता है वो क्या कहता है, एक चीज पहली जो उसकी सोबत में हमको मिलेगी, जब ते साध संगत मोह पाई ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हम भी बनाए, जब ते साधु की सोबत हमको मिली है, कहते उस दिन से ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई बैरी है, ना अपना है ना कोई बिगाड़, सबके अंतर आत्मा परमात्मा के लिए सब ह्यूमैनिटी से प्यार करो। ऐसे महापुरुष सारी मनुष्य जाति से प्यार करते हैं, इसलिए तो सब में उसी की झलक, नास्तिकों के अंतर भी वो बस रहा है और आस्तिकों के अंतर भी वो बस रहा, उसका प्यार सबसे है, उसका काम प्रभु से जोड़ना है और बस, तोड़ना नहीं। हम लोग समाजों की जकड़ों में फंसकर माफ करना, भाई भाई को तोड़ना, और एक ही समाज में धड़ेबंदियां बनाकर उस समाज के भाई भाई को तोड़ना, यह आदर्श न था न है न हो सकता, ये गलत प्रचार। तो इसलिए बड़े खुले लफ्जों में, बड़े जोरदार लफ्जों में कहते छोड़ो, क्या वेश में एक इसकी जकड़ों में मत मर जाओ भाई, क्यों दुबदा ये दुबदी पैदा करेगा, दुरुखी पैदा करेगा, बेचैनी पैदा करेगा, अबतरी पैदा करेगा, और चतुराई है, चतुराई पैदा करेगी, ये चतुराई के कारण ये फल नहीं दियो, क्या जिस जलनिध कारण तुम जगा है ये चीज नहीं, वो गुरु पाई दियो, गुरु से मिलेगी, किसी समाज में रहो, आपने डॉक्टरी सीखनी है भाई, समाजों की जकड़ों में रहने से डॉक्टरी नहीं सीख सकोगे, रहो अपनी समाज में, डॉक्टरी पढ़ने वाले ये तो नहीं कह, पढ़ाने वाले ये तो नहीं कहते तुम शक्ल बदल कर आओ या नई रस्म रिवाज का अख्तियार, ना वो एक मजमून है खास, ये जो मजमून है आत्मानुभव, प्रभु का पाना, अपने आप को जानना, उस गॉड इन एक्शन पावर नाम के साथ लगना, ये मजमून है आत्म तत्व का बोध। इसके लिए किसी खास समाज का होना लाभदी नहीं, किसी समाज में रहकर आप पा सकते, मगर जो समाज की गर्ज है उसको हासिल करो, वो क्या एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, जो सदाचारी नेक पाक जीवन है वो रूहानियत के पाने के लिए पहला जीना, नेक पाक और सदाचारी में पहला कर किसी समाज में ना, जैसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए किसी समाज का भाई डॉक्टरी कॉलेज में दाखिल हो सकता है जो FSC या BSc पास कर, जब तक FSC और BSc न पास करे तब तक दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मानुभव के लिए किसी समाज में रहो, अहिंसा परमो धर्मा, किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा चितवन न करो, सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार करो, सत्य को ग्रहण करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन बनाओ, यह अति जरूरी, ये क्वालिफिकेशन है। किसी समाज में रहकर ये क्वालिफिकेशन कर लो, फिर किसी आत्मानुभवी के पास जाकर उसको सीख लो, वो तुम्हारी समाजों को बिगाड़ता है, वो कहे जहां हो तुम मुबारक हो, ये काम है अंतर्मुख, चलो और कर लो, तो हमेशा की सुखी देने वाली, सुख देने वाली, खुशी देने वाली, हर एक किस्म की खुशी देने वाली चीज जिसके तलाश में दुनिया सरगर्दान है वो क्या है, कहते वो अमृत है। अमृत की तारीफ हो गई, कहाँ है, कैसे मिलता है, क्या नहीं है, क्या नहीं वो है, ये सब बयान किया गया, कहाँ से मिलता है, सो गुरु पाई दिया। कहते जब तक तुम झगड़ों में फंसे रहोगे समाजों की, झगड़ों का ये मतलब ना समझे तुमने समाज छोड़ देनी है। यही कहना है कि जिसने ऐसी शक्ल बनाई उसी का ज्ञान उसी को अनुभव होगा भाई ये गलत। कबीर साहब ने क्या भावे लंबे केस का तो भावे करोड़ गुना, अंतर का चेंज है। बाहरी समाज में रहो, यीशु मसीह के पास। महात्माओं ने कोशिश की है इस बात को खोल खोल कर समझाने की। उनके पास वहां के लोग वहां आकर शिकायत की कि महाराज तुम कहते हो तुम हमारे बादशाह हो, यहां बादशाह हमसे खराज मांगता है क्या करें। कहते चो भाई कायन ले आओ सिक्का जो सोकत कर राज था कर ले आओ, उस पर मोर बादशाह की होती है सिक्के पर, ये किसकी मोर है। कहते बादशाह की, ये बादशाह के हवाले कर लो। अब तुम्हारी रूहों पर परमात्मा की और मेरी मोरे हैं वो मेरे हवाले कर लो। हाँ भाई पुष्कर यही कहता है, अरे भाई जिस समाज में उसमें रहो मत तोड़ो, तोड़ने से अगर प्रभु मिले तो हजारों बदलने को तैयार है भाई। वही बीमारी वही रहेगी, शक्ल बदल लो तो नहीं। जो किया सो मन किया, मन को काबू करना था। मन इंदू के घाट पर बाहर लंपट हो रहा, बीमारी तो यह इसको ठीक, इस मन के काबू करने का इलाज सिवाय नाम के और कुछ नहीं। आप देखिए नाम मन कैसे काबू होता, ना ये बुद्धि इसके मन मूसा पिंगल ब्याह पी पारा हरिनाम, चूहे को अगर पारा पिला दो तो ये दौड़ खारा हो जाता है ना, दौड़ नहीं सकता। ऐसे ही मन रूपी चूहे को अगर नाम का पारा पिला दिया जाए ये दौड़ दुपड़े से हो जाता। तो ना मन के देखे इस नाम की धुनी सुनने की महिमा जब जी साहब की चार पौड़ियों में दी है, सुनिए सिद्ध पीर सुनना। फिर इसका और निर्णय किया है गुरु ग्रंथ साहब में, नाम सुनिए फिर यही रिपीट की है जी वहां दोहराई। तो नाम की धुनी जो घट घट में है उसके सुनने से ये सब कुछ होता है जो चार पौड़ियों में बयान किया गया, उसके सुनने से मन तृप्त हो जाता है, भागने दौड़ने से हट जाता है। भगवान कृष्ण जी ने एक खूबसूरती से उनके जीवन में एक वाक्य बयान किया जाता है अलंकार के तौर पर कि दरिया जमुना में उन्होंने छलांग लगाई, नीचे हजार मुंह वाला सांप था। फिर कहते उसके सिर पर बांसुरी की धुनी बजाते हुए उसको नाग नथन किया। वो कौन सा हजार मुंह वाला सांप है जो घट घट में बैठे, यही मन है भाई। वो प्रणव की धुनी जो हो रही है नाम में धुनी जो है उससे ही ये काबू आ सकता और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए कहते आया भाइयों जकड़ों में न रहो, समाजों में तो रहो। आप एक समाज में एक डॉक्टर है, हाँ हिंदू है या मुसलमान है सिख है या ईसाई है, एक साइंटिस्ट है, किसी समाज में तुम्हारी रस साइंस से है, आत्मनिर्भर या परा विद्या के लिए किसी खास एक समाज का होना या दूषित होना ये लाभ देनी जरूरी नहीं। हर एक समाज में रहकर उसको कर सकता, जैसे डॉक्टरी किसी समाज में रहकर आप डॉक्टरी को हासिल कर पढ़ सकते हो, किसी समाज में रहकर आप साइंसदान बन सकते हो, किसी समाज में रह आप इंजीनियर बन सकते हो, किसी समाज में रहकर आप वकील बन सकते हो, ऐसे किसी समाज में रहकर आप परा विद्या या आत्मविद्या को पा सकते हो अगर उसका रिवाज में पूरा हो जाए। तो इन दो तो कितनी खूबसूरती से बयान किया जी।
मन स्थिर रहो मत कट जाई जियो, मन रे स्थिर रहो मत कट जाई जियो।
कहते बीमारी तो सारी मन की है भाई। कहते आ मन तू स्थिर रहो खड़ा रहना सीख जाए, जब तक मन स्थिर न हो इंद्रिय दमन और मन खड़ा हो और बुद्धि स्थिर हो। इंद्रिय तो इजहार की जगह है जहां मन खींचा फिरता, ये घोड़े हैं जिसको इसको भोगों रूपी खेतों में मन को खींचे फिरते हैं, मन के अधीन है ना, सो दोनों कतर होकर खींचे फिरते हैं। अब जब तक मन ना खड़ा हो काम नहीं बनता। कहते हैं आप उपदेश कहते हैं मन तू स्थिर रहना सीख। कहीं बार भटक नहीं, बार भागना दौड़ना छोड़ दे। फिर और जगह कहा, घर रहो रे मन मुगदिया ने, है मुगद मूड मन, तू घर में रहना सीख। इस पिंड के अंतर गया, इंद्रियों के घाट में बाहर भटक रहा, बाहर क्या मिलेगा, बाहर तो भटक ही भटक। अगर तो हमेशा के सुख, मन भी लज्जत चाहता है ना, बाहर ही लज्जतें। अगर आप गौर से देखेंगे दो चीजों में तकसीम हो जाती है, एक रूप, अच्छे अच्छे नजारे, अच्छा रूप, और एक धुनी आवाज, सुरीली धुने, गाना, दो चीजों में तकसीम हो जाती है। बाहर मन क्यों खींचता है, इन दो चीजों में खींचता है। अच्छे अच्छे नजारे देखकर मन खींच जाता है, अच्छा अच्छा गाना सुन के अभी सुरीली आवाज आने से सबको मन खींच जाएगा। लज्जत को पाने के लिए जा रहा है। अंतर नाम में दोनों चीजें हैं, नजारे भी हैं, पर्चे भी हैं, प्रकाश भी है, खंडों ब्रह्मंडों की सैर भी है। पिंड को जब छोड़ के ऊपर सफर करोगे और उसमें बड़ी सुरीली धुने भी है, उनको सुनने से मुर्दे कब्रों से जाग उठते हैं। मौलाना रूम साहब ने कहा, कहते अगर उसका मैं तुमको थोड़ा इशारा दूं तो मुर्दे कब्रों से जागो, ये कब्र है ना लंबी, कहते जरूर जाग उठे। तो उस नाम के पाने से ये सारा श्रृंखला बन जाता है। कहते हैं मन तू खड़ा होना सही। अब मन कैसे खड़ा हो, अभी मैंने अर्ज की, नाम के साथ लगने से। नाम किसे मिलेगा, जाओ किसी अनुभवी पुरुष के पास जो नाम का रूप है। तो मन को स्थिर रखो भाई, मन एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्त करते, भावे पीछे कमा, जो मर्जी कर लो। एक वक्त एक इधर लगो, इधर उधर लगो, उधर हम गुरु के पास क्यों जाते, किसी अनुभवी पुरुष। अब स्वामी कह दो भाई, लफ्ज गुरु लोगों को बहुत सारा नफरत दिलाने वाला लफ्ज बन गया, वो है तो सही। स्वामी कह दो, स्वामी के मैंने भी गुरु है, अनुभवी पुरुष कह दो, आमिर पुरुष कह दो। असल बात तो यह है कि गुरु नाम ने दुनिया को बदनाम कर रखा। कैसे गुरुओं ने, जो समर्थ पुरुष नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं, उनके अंदर ये कॉम्पिटेंस नहीं जो बयान की गई कि वो बिठाकर आपको अंतर का अनुभव करा सके। राजा जनक को केवल एक अष्टावक्र मिले, ऐसे अष्टावक्र की तो जरूरत है ना भाई, हजारों ऋषि मुनियों महात्माओं की जरूरत नहीं जो ज्ञान नहीं दे सकते, मगर अष्टावक्र जैसी हस्ती की जरूर जरूरत है। उसका नाम आप कुछ रख लो। वो कहते हैं दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूक फूक कर पीता। सौ काल महात्मा के तजुर्बे हैं, इतने तलख जो उनको होते हैं। वो कहते हैं महाराज हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें किताब अच्छी है, मेहरबानी आपके, मगर सच्चे महात्मा के मुराद कल्याण ना हुई ना हो सकती। अगर कोई पिंड से ऊपर आ सकता है, आए, बड़ी खुशी की बात है। कॉमन सेंस की बात क्या, आम अकल की, कि जो इंद्रियों का घाट में बैठा हुआ जिस्म का रूप बना बैठा है, समझे, और फिर इससे ऊपर जाना चाहता, वो इंद्रियों के घाट के साधन करके वो कैसे जा सकता, आप सोचिए। खैचे सूट गुरु बलवान, कोई खैचे वाली हंसी सम्राट को बिठाए ऊपर लाए तभी काम बने ना। राजा जन को पूछा गया था ना, क्यों भाई ज्ञान हो गया, क्या महाराज हो गया, लेने वाला है इकरार के, हाँ अंतर में ज्योति प्रगट है, अंतर ये है, अंतर वो है, अगर रुपये में से दो चार पैसे भी तजुर्बा हो जाए काम बन जाएगा नहीं। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों की तो भाई जरूर जरूरत है। बाहर का कोई काम बड़ा मामूली से मामूली हो, उसके लिए भी किसी उस्ताद की जरूरत है। अरे भाई ऐसा काम जो आंखें बंद करके इंद्रियों के घाट से ऊपर जाकर पाने वाली चीज है, क्या उस तरह जाने वाले किसी आमिल की जरूरत नहीं। इसका जवाब आप खुद अपने दिल से दो। इससे भी ज्यादा जरूरी है, मैं आज कभी सिर्फ सवाल यह है कि ऐसे समृद्ध पुरुष हमेशा ही कामयाब रहे, अब भी कामयाब। बहुत सारे महात्मा ऐसे मिलते जो आपको सिर्फ जिस्म की पुष्टि से खिलाते, आशियों की क्रियाएं से खिलाते, कोई मन की कोते राधि को मजबूत करते हैं, कोई रिधि सीधी शोभाबाजी से खिला देते हैं, ज्यादातर महात्मा ऐसे। और कोई महात्मा ऐसे मिलते जो आपको समाजों की जकड़ों में फंसाते। अरे भाई समाजों का प्रचार तो ठीक, दायरे का काम करता, मगर इसको सही तरीके से प्रचार करो तो ये पाकिस्तान ना बनता, गलत प्रचार का नतीजा था। कौन सी समाज हमको ये इजाजत देती है कि लोगों के गले काटो। کون سی سماج ہم کو اجازت دیتی ہے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں اتارا دیتی ہے کوئی سماج؟ لوٹ کسوٹ کر کے دوسروں کو مال اپنے گھر میں لے آؤ، کوئی سماج اجازت نہیں دیتا. کل ناٹ، اسٹیل ناٹ، بی چیسٹ، اوائڈ آل انٹاکسیکینٹس، سب بات نہیں ہے. دیکھ لیتے تو سدا چاہیے ان سب، یہ غلط پرچار کا نتیجہ جو دکھ بٹا ہمارا زندگی کا اصول نہیں رہا. ہم کسی معاف کرنا، ہم سب من کی، ہمارا مذہب کام ہے، ہمارا مذہب کرودھ ہے، ہمارا مذہب ہنسا، ہمارا مذہب موہ، ہمارا مذہب لوگ، بس سماجوں کا باہری شکل بنائی ہے، بیچ میں ہم ان کے روپ بنے بیٹھے. سماجوں کا تو نام ہم بدنام کر رہے ہیں بھائی، معاف کر. سماجوں کا کیا قصور؟ غلط پرچار کا سوال ہے. حافظ صاحب نے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا، یا کر کی کر جلوہ گر در کفر و اسلام است تو بس، ایک حقیقت جلوہ گر ہو رہی ہے کافروں کے اندر بھی اور مومنوں کے اندر بھی، گرمکھوں کے اندر بھی اور منمکھوں کے اندر بھی، آسکوں کے اندر بھی اور ناسکوں کے اندر بھی. اختلافات مذاہب جملہ وہاں بس تو بس، ان مذہبوں کے اختلاف ہیں، یہ انڈیویجل ویبوں کا نتیجہ. ایک آدمی نے ایک خیال لیا، اس کے 10-20 آدمی گرد گرد ہو گئے اس خیال کو لے کر بیٹھ گئے. دوسرے ایک آدمی، ہاں بھائی یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے 10-20 گرد گرد اختلاف بن گیا. ان بھائی پوچھ میں یہ نہیں ہوگا، اسی لیے کہا کئی بھائی اٹھتے ہیں، کبھی ایک سماج کی پستوں کو برا کہتے ہیں، کبھی دوسرے مہاتما کو برا کہتے ہیں. ارے بھائی انبھوی کہتے ہیں، ارے بھائی تو سب نے جتنا جتنا انبھو کیا اتنا اتنا بیان کر گئے، اس کو انڈرسٹینڈ کرو. کسی سوال کا ٹھیک جواب ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں. یہ یاد رکھ، یہ کہنا کہ پہلے رشی منی مہاتما ایسے ہی آئے اور ایسے چلے گئے، ارے بھائی کیسے دنیا، کیا اس وقت پرماتما وہی نہیں تھا جو اب ہے؟ کبیر صاحب نے کیا کہا، وید کتیب کہو مت جھوٹے، جھوٹا سو جو نہ بیچارا. ویدوں کتیبوں کو جھوٹا مت کہو بھائی، جھوٹا وہ پرش ہے جو بچارتا نہیں، ان کو پیار پریم سے پڑھتا نہیں، اس حقیقت کی طرف جاتا نہیں جو اس کے اندر بیان کی گئی. اگر کسی انبھوی پوچھ سے یہ سنو گے، حقیقت کے نزدیک آ سمجھنے لگ جاؤ. کیا بھائی سارے مہاتما کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی کتنی کوٹیشن دی آپ کو، ہر ایک مہاتما کی مانے چیز وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ پیرل تھاٹس. جنہوں نے انبھو کیا وہ ایک ہی بات، ساؤ سے آنے ایک ہی مت مورکھ آپ اپنے. تو کہتے ہیں انڈیویجل اختلاف کے سبب سے یا وہاں انڈیویجل ویبو کے سبب سے یہ اختلاف بن گیا. ایک اٹھتا ہے کہ ہاں میں ہوتا، اس کے 2000 آدمی کے رنگ میں وہ لے ڈنڈا لیے پھرتے ہیں. انبھو پوچھ ایک چیز دیکھتا، یہ جگہ جو دیکھ رہے کوئی بھی دے وہ ایک ہی چیز بیان کرے گا، دو تو نہیں کرے.
آئے گا مرنے سے پہلے، اگر مرنا تجھے آ جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے تو زندگی پا جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے تو زندگی پا جائے گا. جینے کا اصلی مزہ ایک بار مر جانے میں ہے، جینے کا اصلی مزہ ایک بار مر جانے میں ہے. حق کی پوچھو زندگی، بس موت آ جانے میں ہے. جینے کا اصلی مزہ ایک بار مر جانے میں ہے. گر نہ سیکھا تیرنے کا زندگی میں کچھ ہنر، گر نہ سیکھا تیرنے کا زندگی میں کچھ ہنر، بیرے بے پایا میں پڑھ کے پھر تو بہت کھائے گا، بیرے بے پایا میں پڑھ کے پھر تو بہت کھائے گا، مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آ جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے تو زندگی پا جائے گا، خوف سے مرنے کے ناداں بچتا پھرتا ہے اب، خوف سے مرنے کے ناداں بچتا پھرتا ہے اب، خوف ہی بن کر اجل تجھ کو ہڑپ کر جائے گا، مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آ جائے گا،
کہنا مان سکی دیت سکھا بن جانی.
آگے کچھ اور کہتے ہیں، غور سے سنو.
پانچوں اندری
ایسی اس جسم میں لگی ہیں جن کی کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی ہیں، اندر نہیں کھلتی، باہر کے سنسکار تو لیتی ہیں. کیسے اندریوں کو الٹ ہو بھائی، باہر دیکھتے ہو اندر دیکھو، باہر سنتے ہو اندر سنو، ان کو الٹنا سیکھو. سنتوں کے مارے کو الٹا مارے بھی کہا سدگر ملی ہے الٹی بہی بھائی جیوت مرے تانبو پر. جیسے مرتے سب اندری الٹ کر آنکھوں کے پیچھے آ جائے ایسی جیتی جی آ جائے، گٹ میں جگتی ہے اس کے لیے بحث کی. یہاں آ کر پانچ ہی اندری الٹی جانو، کس کی اندری آسانی سے الٹ سکی؟ جن کی خواہشات کم ہوئی، جن کی خواہشات زیادہ، جتنے اندروں کے بھوگ رس زیادہ اتنی مشکل. باہر سے کیسے اٹھیں گے، ہر وقت باہر ہی کا خیال. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا مار بہت خواہشات تو کم. مہاتما بدھ نے کہا بی ڈیزائر لیس، خواہشات سے رہت ہو جاؤ. خواہشات ہی ہمیں باہر کھینچتی ہیں، نہیں خواہشات کہاں سے؟ اندروں کے گھاٹ سے. جب اندریاں الٹے نہیں، جتنا سنجم کا جیون ہو اتنا آسانی ہوگی اندروں کو الٹنے. اسے سنجم کا جیون بناؤ. یہ دسم گرو صاحب نے کہا کامنا بہین ہو جاؤ. کامنا بہین مینس ڈیزائر لیس. وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں، وہ اس میں کہہ رہے ہیں. بات وہی سو سیاح نے ایک ہی مت کی، تمہارے گھر میں ہے جب تک تمہاری سوچ باہر پھیلاؤ میں جائے رہے گی، اسے دور رہے گی. باہر سیٹوں کو آگے ہی موجود ہے، آپ نے پیدا نہیں کرنا. تمہارے دوست فرمایا کرتے تھے کہ گرو باہر سے دیتا کچھ نہیں، انتریا اس طرح اشارہ کر کے وے آپ کر دیتا. تم سب کیا کہنا چاہیے، ست نام کی گوت والے ہو گئی، تم بادشاہ کے لڑکے ہو مگر مندر کے گھاٹ پر ذلیل خوار ہو. بات یور آل گاڈ ان مین، سمجھے؟ تم سب پرماتما کا روپ ہو مگر ہم نے اپنی گاڈوں کو گوا رکھا. من اندر کے بہو رسوں میں لمپٹ ہوں گے. اور
پانچوں اندری الٹی تانو اچھا مار بھوانی، من کو سادھ چڑھو گگنا پر، من کو سادھ چڑھو گگنا پر، سنو اناد بانی ہنسنی، چھانو دور दूध और पानी।
हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन को इंद्र जाल फंस रहा हूँ। अब जब तक इंद्रियों के भोगरा संयम में ना हल कैसे काम हो। जिनने संयम में जीवन लो उतना आसानी होगी आपकी, ये छुई याद रखो। जिन्हें ख्वाहिशात काम उतनी जल्दी तरक्की होगी। तो कहते हैं क्या करो, मन को साधो, इंद्र जाल से छुड़ाओ, संयम का जीवन। कहां पर आओ, गगन पर, ये गगन इंद्रियों का घाट तभी छूटेगा जो ऊपर आ जाएगा। बाहर से छूटो देखता रू अपने तरफ पे आना करेगी, तो उसमें क्या मिलेगी, वहां से आनंद की बानी हो। वो औद्योगी छोरा, वो औद्योगी, वो नाद, परमात्मा तो अनाद है ना, अनाद है, अशब्द है, अनाम है। जब एकम बहु श्यामा कहा, एको कवाओ तिष्ट लख दरियाओ कहा, कुन कहा फिर कुन हो गया, वो इनटू बीइंग आया। इंटू बींग जो है उससे पहले वाइब्रेशन साउंड बने, साउंड के साथ लाइट बने। कहते ये तुम्हारे अंतर अपने आप सुनाई, आगे मौजूदा पैदा नहीं करनी, अंतर्मुख होने का सवाल है। सिर्फ ये रहा कैसे इन्वर्ट अंतर्मुख होकर इंद्रियों का घाट छोड़कर ऊपर आ सकते, यही बात पैदा करना मुश्किल है। खेचे सुर गुरु बलवान, किसी शुद्ध वंश के पास बैठो, थोड़ी तवज्जो दे ऊपर आ जाओ। अगर कोई भाई अपने आप ऊपर आ सकता है तो खुशी की बात, ट्राई करें। मैं आगे रास्ता नहीं खुलता, ये बजर के पास लग रहा, देर ही रहेगा, बेचते किन्नी जो शुरू भी कर लो और बनती नहीं। अगर अभ्यास थोड़ी बहुत ही बन भी जाए, आगे रास्ता नहीं खुलता। तो पर्दा दूर करे आंखन का, नीच दर्शन दिखलावे, साधु सो सकते। ये है तालीम किन के लिए, सबके लिए। नाम और शब्द और वर्ड, ईसाई इसे वर्ड कहते हैं, वर्ड से सब कुछ बनाया, वो कहते हैं नाम से सब कुछ बनाया, वो कहते हैं शब्द से सब कुछ बनाया, वो कहते हैं कलमे से सब कुछ बनाया। बात तो वही, कलमे से 14 तबक बने हैं, नाम से 14 भवन बने हैं, बात तो वही है। वर्ड से सारी दुनिया बने, नाम से खंड ब्रह्मांड बने, उसी के आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ गायब है। इसी को म्यूजिक आपकी सफेद करके कहा, अरस्तु कहते हैं मुझे एक आवाज खींच कर लेगी एक नई दुनिया को। वो जो आवाज कौन दे रहा, कहां से निकली, परमात्मा से, एब्सोल्यूट गॉड इनटू बीइंग आने पर धुनी हुई, लाइट हुई। वो आवाज को पकड़ लो, कहां पहुंचोगे, जहां से आ रही। घंटे की आवाज को पकड़ो तो कहां जाओगे, उसके पीछे पीछे चलो, जहां घंटा बजा वहां पहुंचोगे, सहजी में। ये इलेक्ट्रिक लिफ्ट समझ लो, बैठ जाओ चलो। जिन्हें इंद्र बहु के रस संयम की उतनी आसानी हो, ये सब के अंतरम भी हो रही है, मगर हमारे बाहर मुखी, हम अंतर्मुख नहीं। बाहर के संस्कार दुनिया की घाटी में भरे पड़े हैं, 100% जीवन बसर कर रहे हैं। इसलिए दौलत होती हुई हमें महसूस नहीं होती। अन भाई पूछते वे आप थोड़ा करके कॉन्टेक्ट देते, उसकी बड़ाई इसी बात में। तो आगे क्या कहते हैं, आगे कुछ और कहते हैं। ये अनर्मानी कहो, श्रुति कहो, उदो गीत कहो, नाद कहो, ब्रह्म की ध्वनि कहो, वाक्सिधि कहो, ऋग्वेद में इसको ज्ञान किया। ईसाइयों ने कलमा और भांगे आसमानी ज्ञान किया, सरोशा करके आपने लोरास्टर ने ज्ञान किया, बात वही कर।
शोर हो तेरे घट के भीतर, शोर हो तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे आलसानी।
वो कहते हो तेरे तो दुमकारे हो रही है, तेरे अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है, सशस्त्र कीर्तन जिसके गीतों में कहा, अखंड कीर्तन तेन भोजन चूरा, कौन आने जान के सबको पूरा, वही नाद तुमको अनाज में पहुंचाने का। तेरे घट में शोर है, तू बाहर कुछ होने करके नहीं सुन रहा। जैसे बाहर शोर हो तो अंतर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती ना, बाहर शोर पड़ा हो यहां कोई आवाज सुनाई नहीं देती, ऐसे अंतर शोर है, बाहर वो बाहर जितने मैं है वो सुनाई नहीं देता, छूट कर पाओ। तो ये आवाज क्या है, आगे बयान करते हैं। गौर से,
शोर हो तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलसानी, राधा स्वामी तीर्थ तो को कहकर अमृत बाणी, हंसनी छानो दूध और पानी।
एक अवस्था वो है परमात्मा की जो अभी एब्स्ट्रैक्ट है, इनटू बीइंग नहीं आई थी। जब इनटू बीइंग आई उसको एब्स्ट्रैक्ट अवस्था को अनाद भी कहा है, अशब्द भी कहा है, अनाम भी कहा, निराला भी कहा है, और उसको महाद्याल करके भी कहा। महात्मा नहीं, महाद्याल। जब वो इनटू बीइंग इजहार में आई ताकत, उसको कहते हैं शब्द नाम। तो राधा स्वामी लफ्ज भी अलख अगम के पारा वही राधा स्वामी से मिलना, कहीं गुरु के लिए कहीं उनके लिए। स्वामी जी महाराज की अपनी वाणी में साहेब स्वामी और सदगुरु स्वामी आता, उनकी कुछ वाणी अपनी, कुछ राय सारंगराम जी ने अपनी मिलाकर, जिसमें साहेब स्वामी सदगुरु स्वामी था वहां पर राधा स्वामी लफ्ज। उनको प्यारा था प्रभु का एक और नाम रख लिया, रख दे समय से, सब नाम प्यारे जोशी को बोध कराए। तो राधा स्वामी दो जगह बरता गया, यहां पर मालकुल के लिए बरता गया, वो अनाद और अशब्द जो है। कहले वो तुम्हें आवाज देकर बुला रहा, तेरह तत्वों को कहकर, अमृत वाणी अमर कर देने वाली वाणी कहकर तुम्हें वापस बुला रहा, आओ अपने। यही गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, जिन तुम भेजे किन्हीं बुलाए, दुख सहाय से थी, वो बुला रहा है, आओ भाई अपने घर आ जाओ, अपने तख्त और ताज तेरा सुना पड़ा है, पहुंच जाओ। यही समस्त अमरेश साहब ने कहा, हरदम निरा आज आहत आया वसूए जानो जस, हर घड़ी एक आवाज उस मालिक से, मेरी रूह को एक जिसम के अंतर आ रही है। क्या कहती है, कह शमश तबरेज ब्या दरबार गाय के लिया, ऐ शमश तबरेज तू वापस आ जा मेरे घर, मेरी दरगाह। तो ये धुनी जो आ रही है ये हमें बुला रही है, वो परमात्मा आवाज देखा, आओ भाई आ जाओ सब। अब धुनी को सुने ही ना कोई दौरा हो जाए, बाहर दुखी हिंदू के भगवानों से बताने था, तो गुरु इस डोरी के साथ जोड़ देता हूं, ये उसकी आवाज है जो तुमको बुला रही है बाहर। अरे वहां कुछ नहीं कर, तो ये स्वामी जी महाराज के शब्द था जो आपके सामने रखा गया। अरे भाई किसी समाज में रहो, समाजों का तलक आपके जिस्म से है, ठीक है। किसी समाज में रहने की बरकत है, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। जिस समाज में इन्हों को भोगों से कुछ संयम में लाओ, इस शरीर को रिश पुष्ट रखो, ब्रह्मचर्य की रक्षा याद रखो, जिस्म की जान ब्रह्मचर्य की रक्षा। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं वो किसी काम में कामयाब नहीं होते। संयम का जीवन बरतो तो यही एक बरकत है। संख्य को बाकायदगी से खाओ तो ताकत देता है, और बहुत खाओ तो मार देता। तो ठीक इस्तेमाल जो शास्त्र मर्यादा उसके मुताबिक अगर हम करें, कई बार आपके सामने ये बात रखी गई कि शास्त्र मर्यादा क्या कहती, शादी करने का मतलब केवल मनुष्य जीवन में एक साथी का, जीवन साथी का साथ लेना है, जो दुख में सुख में गरीबी में अमीरी में हमारे साथ है, दुनिया की यात्रा सुख से मिले और दोनों मिलकर प्रभु को पाए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाने की गर्ज सबसे बड़ी प्रभु को पाना है। एक पल बाल बच्चों को पाना सारे, उसके लिए मर्यादा दी है कि ताकत को तब बरतो जब जब औलाद की ख्वाहिश हो, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीटो कोई चल रहा, दो ढाई साल एक बच्चे को लग जाएंगे, ऐसे एक दो बच्चे हो भी जाए एक अनारी सर। आज तो फैमिली प्लानिंग शुरू हो गई है, क्या करूं, और ब्रह्मचर्य की रक्षा को सिखलाऊ, उसमें तो बदमाशी और बढ़ेगी। आगे तो चोरी चोरी को काम होता था ना, अब खुलू खुला कर दो क्या भाई। संजम जी जिंदगी जिस अन्य जिंदगी का बुनियाद कहो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, दिल भी सही दिमाग भी सही, हजारों में अकेले खड़े रह सकते, और प्रभु के पाने के लिए बुनियाद प्रेम, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, वो उसके पुजारी बनना, वो सब में है, सबकी अंश सब में है, वो जीवन आधार सब में, तो सबसे प्यार करो। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा से तो प्यार करते हो, लोगों से नफरत करते हो, परमात्मा कैसे मिलेगा भाई। मैं आपसे कहता हूँ प्यार है, तुम्हारे बच्चों से नफरत करता हूँ। तो प्रेम का दूसरा रूप है अहिंसा, प्रेमी अहिंसा प्रेम ही है, प्रेम जिससे होगा उसका कभी दिल नहीं दुखाओगे, इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। ये तो प्रिया मिलन जी सिखता ही अनाथ है, किसी दिल को न दुखाओगे। जिसके दिल को दुखा हुआ प्रेम करना चाहिए ना, तो प्रभु प्राप्ति के लिए जैसे जिस्म की बुनियाद ब्रह्मचर्य की रक्षा है, प्रभु प्राप्ति की बुनियाद प्रेम। ये कहां से आए? खेतों में उगता नहीं, दुकानों पर बिकता नहीं, उसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में है। जैसी शोभा उतना चाहिए, प्रेमियों की शोभा को प्रेम बढ़ेगा, दुनियादारों की शोभा में जाओगे दुनिया का प्रेम बढ़ेगा, प्रभु भक्तों की शोभा में बैठकर प्रभु भक्ति कराना चाहिए। तो इसलिए गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, प्रेम गया जीविया जित हर प्रीत न पाने, लानत ऐसी जिंदगी पर मनुष्य पाने पर, अगर हमारे अंदर प्रभु का प्यार नहीं बना। फिर कहते हैं उन कामों पर भी लानत है जिनके करने से दुग्धा बन जाए, द्वैत का आलम आ जाए। तो कहते हैं अब इसका इलाज कोई किताबों के पढ़ने से सुनने से थोड़ी मेरा शोर तड़प पाने का शौक बन सकता, प्रेम नहीं। प्रेम तो कुछ और, प्रेम उसी को कहोगे जिसका रस मिलाओ, जिसको हंडाओ, जिसको देखा ही नहीं कभी, फिर उनका प्रेम कहते। तो कहते हैं ऐसे सदगुर सो प्रीत कर जित गोविंद सो प्रीत, जिसकी आत्मा प्रभु का रंग सुमर बढ़े प्रेम रस रंग के चाओ सात के संग, वो प्रभु के प्रेम और विश्व के प्रेम के ओवरफ्लोइंग पहले होते। उनकी सोच में बैठोगे जैसे खुशबूदार फूल, कमरे में रखो कमरा खुशबूदार, कपड़े में रखो कपड़ा खुशबूदार, मिट्टी में रखो मिट्टी खुशबूदार, जैसी सोच वैसा प्रेम की झलक प्रभाव कहो लाइफ से लाइफ कैसी किसी कैसी किसकी सोबत की मैसेज, जिसकी सोबत जिसकी जिंदगी में उस प्रभु का प्रेम और सारे विश्व का प्रेम ओवर फ्लो। ये सत्संग था आज, दो महात्मा ने दर्शन दे दिए, बड़ी कृपा की है। थोड़ा सा आप कुछ अगर सभा हो
क्या करें, पास में
पांच छोड़ के दस मिनट होगा
बड़ा। महात्मा कपड़े रंगे ये बहुत देखी, क्योंकि ये दया होती है गुरु लोगों की, माता पिता
जरूरी है भोगे द्वारा, जब जान लो तो फिर इसका खोना जरूरी है। तो एक दिन में काम नहीं बनता, वो भी जो महात्मा जी ने फरमाया सत्संग लाग रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए, आज करो कल करो, लगे रहो कुछ आज समझ आएगी कुछ कल आएगी। तो मुट्ठो से आपको यहाँ आना नसीब है, तो कुछ कुछ पले बंधो समझो और फिर उसको करो। तो महात्मा का शुक्रिया है उन्होंने दर्शन दिए। अच्छा अच्छा कई बात नहीं है, मैं दर्द महात्मा के लिए खैर आपका सत्संग खत्म है भाई। एक बात याद रखो जो बार बार आपको समझाने पर भी शायद दिमाग में नहीं बैठी, यहाँ कोई मत नहीं, ये भूल में न रहो, यहाँ पर एक मत का ही उपदेश है जो दूसरे का। बाहर उठी अपरा विद्या अपनी अपनी रखो, अपने अपने लेबल लगाए रखो, अपने अपने चेन चक्र रखो, उससे हमारा कोई चक्कर यहाँ पर कब। मैं अपनी समाज हूँ, मैं जन्म मन पर निश्चय कर लू, तुम अपनी मगर सोचो, मतलब अपना अपना रखो। जो इनर वे अप है रिलीजन इन दी एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन, उसको बढ़ाओ। बात तुम आत्मा हो, चेतन स्वरूप हो, सुंदर जाल में बुरी तरह से फंस रहे थे, आजाद हो, अपने आप को जानना हो ठीक है, तो बात नहीं बोले अपने अपने रखो भाई, कोई बोला बदलने की जरूरत नहीं, गलत आदमी में न रहो, मुझे सारे बोले प्यारे सब प्रभु की याद के बाद में, राम राम कहो, नमस्ते कहो, सत श्री अकाल कहो, जय देवा कहो, या अस्सलाम वालेकुम कहो, या और कोई बोला जो तुम्हारा है राणा स्वामी मत मे राणा स्वामी, यहाँ कोई मत नहीं। जीवन को साफ जीव उनको साफ सुथरा रखो, सदाचारी जीवन बनाओ, सदाचारी जीवन ही प्रभु प्राप्ति के लिए पहले देना, सच सबसे उठ।
ये भगवान का घर है,
ठीक है, ये भगवान का घर है, घर है बस मान लिया कि घर है, घर तो सारी भगवान के है, हम उसको रंग दे देते, वो रंगों से रंग है, और गुरु तुमको ऐसे रंग में रंग देता है जिस पर और कोई रंग नहीं जा सकता। ये असल बंधा भाई जो आपके सामने रखा, ये कॉमन ग्राउंड है सबके लिए, सब समाजों के भाई आते हैं यहाँ, सिर्फ स्वाय महापुरुष जुबानी के कोई न कोई पेश कर दी जाती है, और सारा चार दो चीजें। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अपने अपने सारे बोले मंजूर हैं, जो बोला कहो यही से हाथ जोड़ना कबूल करो, मत से फेंकने की बीमारी खत्म करो, हाथ जोड़ना ही काफी है। यही से अब अपने अपने घरों को आप जा सकते हो बड़ी खुशी से, क्योंकि 11:15 हो गए। हमने बड़ी कृपा की।
रात सूरज महला पहला। जिस जल नित कारण तुम जग आए, जिस जल नित कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो।
श्री गुरु नानक साहब का ये शब्द है, फरमाते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान एक ऐसी खुशी हासिल करने के दरपाय लगा पड़ा है जो बस खुशी ही खुशी ऐश इला ऐश न हो, जहां दुख और अंधों को कोई ख्वाब ख्याल भी न रहे। दुनिया के सामानों में ये खुशी हमेशा की नहीं है, छिन भिंगर। यहां के इसके साथ अपने चित लगाने से हम सुखी नहीं हो सकते। उसका कारण यही है कि जब तक तो हमारी अटेंशन कहो सुर्त कहो दुनिया और उसके सामानों से लगी रहती है, उस वक्त वो सुख हमें प्रतीत होता है। असल में वो सुख उन पदार्थों में नहीं बल्कि हमारी अपनी तवज्जो या सुर्त में है जो उसे लगी हुई है। तो वो चीजें जब हमारी आंखों से ओझल होती हैं या हमारी सोच उनसे हटती है, दुख का कारण बन जाता है। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से हमेशा का सुख हो जाए, हर एक किस्म की खुशी मिल सके, ये है सवाल। इसका जवाब गुरु नानक साहब इस शब्द में दे रहे हैं। फरमाते हैं जिस जल निद कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाई दियो। निधि नौ किस्म की है, नौ किस्म की निधियां यदि खुशी है, हर एक किस्म का सामान, खाना पहनना साजो सामान ये वो, हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो जल है वो क्या है, कहते वो अमृत है। कहां से मिलता है, कहते गुरु से मिलता है। थोड़े लफ्जों में ये बयान कर दिया, मगर इसमें कुछ इस्तलाएं आई हैं, टर्म्स हैं, जब तक उनकी समझ ना हो पूरा मतलब हासिल नहीं होता। तो हर एक किस्म की खुशी देने वाला जल कौन सा है, कहते अमृत। अब सवाल यह है कि वो अमृत किसको कहते हैं। जब तक अमृत की समझ नहीं आएगी काम नहीं बनेगा। अमृत की समझ आए तब हो ना, फिर सवाल आता है कहां से मिलता है, कहते है गुरु से। गुरु का सवाल तो तब आता है ना जब अमृत की समझ आए। अमृत मुसलमान फकीर इसको आबे हयात कहते हैं, जिंदगी देने वाला पानी। वेदों में से सोमरस करके बयान किया, सोमरस गुरबानी में इसको अमृतसर करके भी बयान, अमृत का सरोवर। और मुसलमान फकीरों ने चश्मे कौसर या हौज़े कौसर करके बयान किया, वो हर एक इंसान के अंदर। अब ये चीज क्या है, इसकी तारीफ संतों ने आप भी किया, जिस महात्मा की मानी हो उसी महात्मा से दरियाफ्त करना चाहिए कि महाराज आपकी गर्ज अमृत से क्या है जो हर किस्म की खुशी देने वाला। तो हर किस्म की खुशी देने वाले जल का नाम अमृत है। तो अमृत कहते हैं अमर जीवन देने वाला, जिंदा जावेद हस्ती बनाने वाला, जन्म मन से रात हो जाए, हमेशा की जिंदगी को पा जाए, अवधि जिंदगी को हासिल कर जाए, एवर लास्टिंग जिंदगी मिल जाए, इसका नाम जो ये बख्श सकता है उसका नाम अमृत है। और वो क्या है, गुरबानी में इस बात का निर्णय किया गया है, अमृत साचा नाम है, अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जा। कि वो अमृत जो हमेशा के जीवन देने वाला है वो सच्चा नाम। अब सच्चा नाम ऐसे मतलब झूठा नाम भी है कोई, साचा नाम दिए तो झूठा नाम दूसरी तरफ बनाएंगे नहीं। साचा नाम ऐसा नाम जो हमेशा अटल होला फन, जो फना में जाने वाला नहीं। अब देखेंगे कि परमात्मा के दो किस्म के नाम हैं, एक अक्षरी नाम। परमात्मा का वैसे कोई नाम नहीं, नो नेम, बनामे हूं कि और नामे नदार है ना, बाहर नामे के हानि सरबराज, उसके नाम से जिसका कोई नाम नहीं, जिस नाम से भी उसको याद करो वो सामने सिर निकालता, वो अनाम है, नेमलेस वन। नाम हम लोगों ने रखे, जब जब ऋषि मुनि महात्मा आए दुनिया में उस हस्ती के बोध कराने के लिए, लोगों को समझाने बुझाने के लिए कोई न कोई लफ्ज बरते, किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने विश्वंबर कहा, किसी ने गोसाई कहा, अनेकों नाम। तो ये सारे नाम जब तक उस एक हस्ती जो ला तगैर ला तबदल है, अनचेंजेबल परमानेंस है, उसके बोध के कराते हैं, तब तक सारे नाम ही मुबारक हैं। भले हार जाओ जेते तेरे नाम, मगर ये अक्षरी नाम है। गुरबानी कहती है 52 अक्षर लोक त्रय सब किसी नीमा है, हिंदी के 52 अक्षर हैं, जितने बयानात दुनिया के हैं आते हैं सब इन 52 अक्षरों द्वारा आते हैं। मतलब कहते हैं ए अक्षर खिर जाएंगे, ओ अक्षर इनमें ना, ये अक्षर तो फना हो जाने वाले हैं, माया के अंतर है, वो अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म और उसे पार जो है वो इसमें इनमें नहीं अदा हो सकता, वो लाभयान है, अनशैन है। तो जिस अक्षर को ये अक्षरी नाम बयान करते हैं, ये अक्षरी नाम तो फना हो जाने हैं, वो अक्षर जिसको मैं बोला फना से रहे वो साचा नाम। तो नाम की तारीफ फिर संतों ने दी है, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम वो ताकत है जो से खंड ब्रह्मंड धारे गए, तो एक पावर बन गई ना, नामे ही ते सब जग हुआ बिन सदगुर नाम न जापा, नाम से ही सारा जगत इनटू बीइंग हस्ती में आया है, उस नाम का कांटेक्ट नहीं मिल सकता जब तक किसी सत्स्वरूप हस्ती से न मिले, जो कॉन्टेक्टेड है वही कॉन्टेक्ट देगा ना, जो जुड़ा वही जोड़ सकेगा। फिर जपजी साहब ने इसका जिक्र किया, जेता कीता तेता नाव वेणा वेना ही कोथाओ, जितना किया हुआ पसारा ये सब नाम का है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम ना हो। तो नाम समझने के लिए ये कह दो, परमात्मा परिपूर्ण की जो ताकत है, गॉड इन एक्शन पावर, गॉड इन एक्शन कह दो, उसका नाम नाम। उस पावर के अनेकों नाम ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे, ये अक्षर खिल जाने वाले हैं, वो अक्षर लापाने। तो कहते हैं फिर क्या कहना कछु न जाता, कहते वो बयान वाली चीज नहीं, वो सच्चे नाम को जो अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जाए वो कहने में बयान में नहीं आ सकता वो नाम पावर जो उसका कांटेक्ट तो हो सकता मगर अक्षर द्वारा क्या बयान करोगे। बड़ी मोटी बात मैं आपको कहूं घंटे की आवाज टन टन होती है। एक आदमी ने कभी घंटा न देखो टन टन न सुनी हो उसकी आवाज उसको कहो घंटा टन टन करता उसके दिमाग में क्या बैठेगा बैठ सकता कोई उसको घंटा बजाओ कहो इसका नाम टन टन है। अब टन टन आवाज जो है ना लफ्ज ये घंटे की सही आवाज को अदा नहीं करता। नजदीक से नजदीक इतने लफ्जों में अदा हो सकती है मगर असल में ये नहीं। देखिए ओम लफ्ज है इसको वेदों में कहा ये प्रणव की ध्वनि है प्रणव की ध्वनि वो घोर आवाज है। अब वो जो अपने आप में घोर ध्वनि है ना वो एग्जैक्ट ओम लफ्ज नहीं। हाँ जितने बयान हो सकता वो लफ्ज ओम नजदीक से नजदीक जाते टन टन लफ्ज टन टन की आवाज को नजदीक से नजदीक अक्षरों में बयान हो सकता है ऐसी लफ्ज ओम भी ओम प्रणव की ध्वनि तो वो चीज लाभ्याम अनरिटन लॉ हमारे दूर फरमाया करते थे अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज ऐसी चीज जो कभी लिखने में नहीं आई कभी बोलने में अदा नहीं हो सकी। तो कहते हैं कि अमृत साचा नाम है कहना कछु न जाए पीवत हूं परवान बिहा पूरे शब्द समा। जिसने इस नाम रूपी अमृत को पी लिया वो मालिक की दरगाह में परवान हो गया एक्सेप्ट हो गया वो पूरे शब्द में समा गया उसका रूप बन गया। पीवत हूं जिसने पी लिया यही कहा गुरबानी में जपजी साहब में जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत काल जिन्होंने नाम को तिहा लिया ध्याना कुछ और है अदा करना जबान से कुछ और है अंतरात्म में जुड़ना कांटेक्ट करना इसका नाम है ध्याना। कहते हैं ऐसे पुरुष कि इस मनुष्य जीवन की जो यात्रा है मुशक्कत है सफल होगा उसका मुख मालिक की दरगाह में उजला हो गया और खुद ही नहीं और अनेकों जीव उसके साथ उधार हो गए क्या उधार हो गया। फिर कहा अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदगी है अमृत गुरमत पाए रहा हूं। कि अमृत भाई फिर तारीफ करते कि अमृत हरि का नाम है ऐ मेरी जिंदगी अमृत हरि का नाम है कैसे पिया जा सकता कहते गुरमत द्वारा। यहां भी यही कह रहे हैं ना जिस जलनंद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाएगी ये भी ये कह रहे हैं गुरु मत द्वारे वो अमृत मिलता। हर का नाम फिर क्या कहते हैं अमृत जल निर्मल वही जल का सवाल आ गया फिर कैसा जल जो निर्मल हरि का नाम जो है वो अमृत है कहते निर्मल जल है उसका नतीजा क्या है ए औखत जग सारा सारा जगत ही बीमारी बीमार है सारी जगत का यही है कि वाहिद इलाज कौन सा अमृत निर्मल जल क्या नाम। जब तक हमें टर्मिनोलॉजी से इस्तलाहों से पूरी वाकफियत ना हो वाणी की कैसे मिलता देवे दीक्षा हरि का नाम अमृत है कैसे मिलता दीक्षा द्वारा मिलता दीक्षित हो तब मिलता जबान से बयान से नहीं कॉन्टेक्ट देना पड़ता जिसको बैक करना कहते हैं दीक्षित करना कहते हैं कहते हैं दीक्षा दीक्षित का मौका है। पहले कहा था बिन सतगुर नाम न जापा जब तक सत्स्वरूप हस्ती न करे वो हमें बैत न करे उसका कांटेक्ट न दे तो वो मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता सवाल ये नाम है कहां इसका जवाब दिया नाव निधि अमृत प्रभु का नाम दही मैं इसका विश्राम। नाव निधियों के देने वाला जो प्रभु का नाम है इस जिस्म के अंदर उसका भाषा डिवाइन लिंक उसका गट गट में है, उसके आधार पर हमारी आत्मा चल रही जिस्म के साथ कायम है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मंड चल रहे हैं। जब वो सत्य खींच ली जाती है, पिंड की परले हो जाती है, ब्रह्मंडों की परले हो जाती है। कहां पर मिलती है और हम कहां बैठे हैं? हम पिंड का रूप बने बैठे हैं, इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप और जगत का रूप बने बैठे हैं। अब अगर उसको पाना हो तो कैसे पा सकते? तो वो है अदृष्ट और अगोचर। अदृष्ट गोचर नाम है पारा, बाह्य दृष्टि का मजबूत नहीं, अगोचर है। जब तक हम अगोचर ना होंगे, इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आएंगे, तब तक नहीं मिलेगा ना। अब प्रैक्टिकल मजबूत हुआ कि नहीं? पिन से पहले ऊपर लाना, हम जिस्म का रूप बने बैठे, फिर उसके साथ जुड़ लो। तो ये फरमा रहे हैं, फिर कहते हैं अमृत के पीने से क्या होता? अमृत हर का नाम है, जित पीते सुख हो। अगर इस अमृत को तुम पी दो, हरि का नाम जो है, इसमें रस है, महारस करके बयान किया, नाम महारस पिय, सब रसों का बादशाह है नाम, बड़ी भारी मिठास है इसमें, एक नशा है, जरूर है, निजानंद है, नाम खुमारी नाम का जड़ी रहे दिन रात। कहते जो इसको पी जाए उसकी सब प्यासें खत्म हो जाती है। इसी नाम को शब्द करके बयान किया है, गुरु शब्द महारस मीठा, महारस करके बयान करते हैं। गुरु का शब्द कैसा शब्द? जो गुरु द्वारा मिलता है। तो शब्द दो किस्म के हैं, एक तो शब्द ये जो हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, इसमें गुरु की कोई जरूरत नहीं, वो शब्द गुरु द्वारा ही मिल सकता, क्योंकि प्रिंस ऊपर आकर मिलता। कहते हैं तो बड़ा भारी मिठास है, ऐसा अमृत अंतर डीठा, बाहर नहीं बाहर, हिंदियों के जहाज जब तक अंतर्मुख नहीं हो गए, इन्वर्ट नहीं हो गए, तब तक इस अमृत को पान नहीं कर सकोगे। जिन चाख्या पूरा पद होए, जिन्होंने इसको चख लिया वो पूर्ण पद को पा गया। इन्हों के घाट से ऊपर आए, इसको पी जाए, वो पूर्ण पद को पा जाएगा। नानक इसको पीने से उसको सुख हो जाता है, जिसको ये मिल जाए। तो अमृत जल निध कारण, जो जल हमेशा की सुख देने वाला, खुशियां देने वाला है, वो कहां से मिलता? उसको कौन सी चीज है? वो कहते हैं वो है अमृत। अमृत क्या है? नाम। तो नाम और अमृत का सवाल रहा, अमृत और नाम एक ही चीज। जिसको ये मिल गया, मिलता कहां है? अंतर, बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में है। नाव ने दी अमृत सब का नाम, फिर कहा दृष्ट गोचर नाम पारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। देखिए बिल्कुल फैमिल चीज मिलती, खोल खोल कर महात्माओं ने यत्न किया इस बात को समझाने का, मगर यह एक प्रैक्टिकल कहना कुछ जा अदा करने वाली चीज नहीं। एक आदमी, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि घंटा कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसको हजार का और टन टन होता है, क्या समझेगा? उस आध घंटा बजाया कहे ये टन टन है, तब तो समझ आ जाएगी ना, फिर कहीं भी सुनेगा ये भाई टन टन है। हालांकि टन टन ठीक आवाज की अदायगी नहीं, ऐसे नाम के मुतल्लिक है। फिर क्या कहते हैं गुरु रामदास जी साहब, जिन वडे आई तेरे नाम की, तेरते मन मा है। कहे प्रभु, जिनको तेरे नाम की वडाई मिल गई, वो मन में रसे रहते, रख जाते, उस रस को पाकर मन उनमें लग जाता है इतना कि फिर उसको खेचे से बाहर नहीं आता। अब क्या हाल है? अब मन बाहर इंदु के भोगों रसों में इतना लंपट है, इसको खेच करके अंतर लाओ, ये अंतर नहीं जाता। जब अंतर में वो रस आ जाए, फिर खेच खेच कर इसको बाहर लाओ, ये बाहर नहीं आएगा। जब वो रस आवा, ये रस नहीं भावा। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत न, एक अमृत अमृत सर कहते हैं अमृत एको नाम है, ये भी जहां तक ज्ञान किया तो कहते दो नहीं एक ही चीज है सारी दुनिया के लिए, ये नहीं कि न्यू के लिए और आई है। हाँ लफ्जों का फेर जरूर है, कोई उस किसी ने अमृत कहा, किसी ने आबे हयात कह दिया, किसी ने सोमरस कह दिया, बात तो ये है। हर का नाम अमृत कलमा है एव निधाना सद उपाय, कलयुग में हरि का नाम ही अमृत है। कहते ये खजाना कहां से मिलता है, कहते साधु से, बार बार वहीं आते। तो इस अमृत की निशानी क्या है, सवाल क्या है, देखने वाली बात। अमृत में धुनी है, तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे दगाई, हे मालक तेरे दर पर सहज की धुनी हो रही है। फरमाते हैं धावत थम्य मन जो बाहर भाग रहा है वो खड़ा हो जाता है। सतगुर मिलिए दसवां द्वार पाया, नौ दरों से ऊपर आने का रास्ता मिलता है जब सतगुर मिल जाए। तिथि अमृत भोजन सहज तोनो पूजा, बस आप कर दें तिथि अमृत भोजन, अमृत का भोजन मिलता है वो क्या है कि सहज की धुनी ऊपर जाती है, उसमें धुनी है। जित शब्द जगत थम रहा है, जिसके आधार पर सारा जगत खड़ा, तो उस नाम पावर में जो अमृत जिसको कहा है, कहते हैं उसमें धुनी है, धुनी उसी को श्रुति करके वेदों ने बयान किया। फिर फरमाया हर अमृत कथा श्रेष्ठ, हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरबचनी साज चक्र, श्रेष्ठ है ये कथा, कथा हो रही है, कथी जा रही है, सबसे श्रेष्ठ है। कब मिलती है, कहते गुरु बचनों द्वारा मिलती है। फिर कैसे हो, कहते हैं, कहते हैं इससे सहज सहज ये पी जा सकते, ऐसे नहीं। फिर इसमें और भी कुछ कहा, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, फिर इसमें ज्योति भी है, दोनों चीजें ध्यान कर रहे हैं। इसमें दुनी है, कलाम कदीम हो रही है, बांग आसमानी हो रही है, ये उद्गीत हो रहा है जो उपनिषद कहते हैं, और श्रुति हो रही है, सुना गया श्रुति, मैंने सुना गया। आप देखिए श्रुति और स्मृति दो चीजें हैं, जो बयान की गई वो स्मृति हो गई, जो श्रुति ला बयान है। वेदों का खंडन तो हजारों लोगों ने किया होगा, मगर श्रुति का खंडन आज तक नहीं हो, कैसे हो, वो बयान वाली चीज ही नहीं। तो श्रुति असल वेद है, वेदों को श्रुति कहा, स्मृति नहीं कहा, श्रुति। तो श्रुति के मिलने का सवाल है, हर अमृत कथा श्रेष्ठ गुरबचन सहजे चाकी, जिसको हर ब्याह प्रकाश अंदर प्रकाश हो जाता है, मिट्या अंधहारा, अंधहारा मिट जाए, आंखें बंद करो जब नाम होगा ना अंतर में प्रकट हो तो प्रकाश हो जाएगा। नाम जपत कोट सूर्यारा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होगा जब नाम को जपोगे। मैं बताओ हमें प्रकाश हुआ है आज तक, कुछ न कुछ सिमन तो कर रहे हैं ना, सारी दुनिया कर रही है। अगर यही नाम हो, ये पहला कदम है, नाम है नामी को पकड़ना। पर इसमें प्रकाश नहीं हो तो इसका मतलब जिस नाम का जिक्र गुरबानी में आ रहा है वो अभी नहीं मिला हमें। जो सूरज रायण किराखी, जैसे सूरज चढ़ता है ना उसकी किरणें आती है, ऐसी लाइट अंतर आती है, कितनी मिसाल खूबसूरती से दिया। अगर आपको कोई महात्मा बिठाकर इस सूरज रायण किराखी कान बहु करा दे तो समझो नाम मिल गया कि नहीं। इसीलिए कहा ये पिन से ऊपर आकर चीज मिलती है, पहले नहीं। इसलिए कहा अदृष्ट गोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरुमुख नैन, वो अदृष्ट है, अगोचर है, ऐसी चीज है, अलख है, निरंजन है। तो कहते कौन देखता है, सो गुरुमुख देखता है। गुरुमुख किसको कहते हैं, जो सो गुरुमुख की तारीफ गुरु अमरदास जी साहब ने की है। गुरुमुख कौन है, जो गुरु से थी सन्मुख हो, जो अनबहिपोष के सन्मुख बैठा हो उसका नाम है गुरुमुख, तो गुरुमुख उसको देख सकता। यही फिर कहा सतगुरु विच अमृत है, फिर ये कहा सतगुरु विच अमृत है, जो सत स्वरूप हस्ती है उसके अंतर अमृत भरपूर हो रहा, ओवरफ्लोइंग, वो प्याला है नाम का कह दो। वर्ल्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, शब्द मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान रहा। तो सतगुरु विच अमृत है, हर उत्तम पद पा सोए, हरि के उत्तम पद को पा सकते, अगर वो मिल जाए तो हरि के उत्तम पद को पा सकते। अगर सतगुरु सत्स्वरूप हस्ती न मिले तो हम नाम से खाली रहेंगे। जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ को हाथ लगाओ तो पानी भीग जाता है कि नहीं। अगर अंतरात्मा में सदगुरु या सत्स्वरूप हस्ती के साथ हम कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में दिल दिल को राह बनेगा, फिर से हमारे अंदर वो शब्द धुमकाने देगा, क्योंकि वही चीज है ना। वो नानक कृपा से पाई तिहाई गुरुमुख पावे को, ये मेहर की चीज है, जो गुरुमुख होता वही पाता। ऊपर आया सो गुर पाई दिया। तो यही नहीं, फिर सवाल आता है अगर यही है तो कहां पर मिलता है। सवाल तो यही है तो कहां पर मिलता है, इसका जवाब संतों ने दिया बड़े खूबसूरती से कि ये अमृत बायरमुखी इंदू के घाट पर नहीं, ये अमृत कहां पर है। कबीर साहब ने कहा नौ कर देख जो कामण भूली बस अनूप न पाए। इस जिस्म के नौ द्वारे, दस द्वारे हैं, नौ तो प्रगट हैं, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रहा है। नौ दो आंखों के दो कान दो नाश का मुंह गुदा और इंद्रिय तो है प्रगट, दसवां इसमें एक द्वारा है जो पिंड से अंड और ब्राह्मण को जाने वाला रास्ता, उसके मुतालिक सब महात्माओं ने जिक्र किया है। क्राइस्ट कहते हैं नॉक इन इट शैल बी ओपन अनटू यू, दरवाजा खटखटाओ और ये दरवाजा खोला जाएगा। अंधे दर की खबर न पाई, ऐ अंधे इंसान तुझे दर का पता नहीं, वो दर जो प्रिंस एंड और ब्राह्मण के पार जाता। तो कहते जो रूपी स्त्री नौ दौरों में बाहर भटक रही है, ऐसे इसके अंतर अनूप बस्त है, उसको ये नहीं पा सकता। फिर कहते वो बस कौन सी है कि बस अगोचर ठाई इंदु के घाट से ऊपर है, और अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, नाम पर फिर आ गए कि नाम है। नौ दरवाजे नवे दर फीके है, ए अमृत दसवें चुई है। मैं खोल खोल कर बयान किया एक चीज को, दो नौ दरवाजे हैं, इसमें फीकापन है, मर कर देने वाली चीज महारस वो दसवें द्वारे में मिलती। जब तक आप बाहर से इन्वर्शन नहीं होगी, अंतर्मुख नहीं होगे, नौ दरों को छोड़कर दसवीं गली में नहीं आओगे, बैग कहां पर है वो दो बड़ी मत पीछे भगवान किसी ने कह सकते। नाटका का उगुर भाव